तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 1 से 10। तो भगवद गीता आप सबको प्राप्त हुई होगी। तो भगवद गीता के अध्याय 4 के इन 10 श्लोकों पर हम कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो पढ़ के आए हैं इन 10 श्लोकों को? आपको इन्फॉर्म किया जाता है अगली बार कौन से श्लोकों में लेक्चर हो रहा है? हाँ हाँ तो अच्छा यही है कि हर लेक्चर से पहले यदि आप पढ़कर आते हैं तो बहुत सरलता से उस विषय को आप समझ सकते हैं। जो वक्ता हैं चर्चा करेगा उसको आप सरलता से समझ सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था भगवद गीता की अध्ययन के ग्लोरीज के बारे में, तो शंकराचार्य का वर्णन करते हुए मैं कह रहा था कि उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की थी जिसका नाम था मोह मुद्गर स्तोत्र, मोह मोह से निकलने वाला। तो वैसे शंकराचार्य का भाष्य पढ़ना मीन्स कृष्ण से दूर जाना। तो ऐसे शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और बुद्धिज्म को भारत से हटाकर नया फिलॉसफी स्थापित किया था जिसको मायावाद दर्शन कहते हैं, और उन्होंने ये चीज की स्थापना की थी कि जो परम ब्रह्म है वो निराकार है, इम्पर्सनल है, उनका कोई रूप नहीं है, हम उसमें मर्ज हो जाएंगे या फिर हम परम ब्रह्म हो जाएंगे या अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो वो है। हाँ? तो इस प्रकार से ऐसे शंकराचार्य भगवत गीता का उन्होंने बहुत अधिक ग्लोरिफिकेशन किया। हाँ? तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता, कि भगवत गीता का कोई व्यक्ति थोड़ा भी अध्ययन करता है तो इसलिए बार बार जोर दिया जाता है कि भगवद गीता को क्यों स्टडी करें, क्यों समझें। तो आप कई बार आप सुनते हैं कि ये हमारे जीवन की मैनुअल बुक है, तो लेकिन हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। तो ये जो प्राचीन विद्या है भगवद गीता की जो भगवान हम सबको प्रदान करते हैं, तो शंकराचार्य ने देखा कि उनका एक सन्यासी शिष्य पूरा बूढ़ा हो गया है और दिख भी नहीं रहा है लेकिन ग्रामर पढ़ रहा है, संस्कृत का ग्रामर। तो उन्होंने देखा, अरे अरे ये तो मूर्ख है। हाँ? पूरा शरीर खत्म होने जा रहा है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, चलना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, फिर भी ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ग्रामर व्याकरण को पढ़ रहा है संस्कृत के। तो उन्होंने कहा ये चीज से जीवन के लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होना असंभव है। तब उनके मुख से ये स्तोत्र निकला, तब उन्होंने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, भगवान की वाणी को उन्होंने दोहराया, अरे मूर्ख अभी टाइम चला जा रहा है, जीवन खत्म होने जा रहा है। हाँ तो तुम्हें क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, भगवान का। तो भजन का, भगवान का भजन करने का मतलब है भगवान के इंस्ट्रक्शन को समझना। भजन अपने मनमाने ढंग से नहीं कि मुझे ये भजन अच्छा लग रहा है वैसे करता हूं, मेरे मन से ऐसे हो रहा है। जैसे आज मुझे किसी ने फोन किया तो कहते हैं कि मैं तो हमारे घर में लड्डू गोपाल है, कृष्ण है, मैं तो उनसे इस भाव में, हाँ सेविका की भाव में, पति के भाव में, पता नहीं क्या क्या भाव में कहते मैं उनको ये करता हूं। मैंने कहा ये सब भाव नहीं है, ये आपकी भावुकता है। हाँ तो भगवत सेवा हाँ जानना है तो हमें भगवान के वाणी को समझना होगा। हाँ तभी संभव है भक्ति आदि जो चीजें हैं। तो इसलिए ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो भगवान विशेष रूप से प्रदान करते हैं अर्जुन को, और शंकराचार्य कहते हैं कि भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता, गंगा का थोड़ा जल भी किसी के मुंह में चला जाता है, हाँ, और भगवत गीता का थोड़ा भी कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, हाँ, और यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति की चर्चा कौन नहीं करेंगे? यमराज नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है भगवत गीता को स्टडी करना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य का सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? बुक। हाँ, बुक्स सबसे क्लोज फ्रेंड है। तो भगवत गीता को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए, भगवत गीता ग्रंथ को। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक अंग है और जीवन उपयोगी नॉलेज भगवान प्रदान करते हैं। तो इसी भगवत गीता से आपने 3 अध्यायों पर चर्चा की है, तो हम जो पहले 10 श्लोकाज हैं 4वें अध्याय के, उसका वर्णन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम पीछे जाएंगे। आप जब भी सीरियल देखते हैं लोग, तो टीवी सीरियल में भी रिकैप आपको पीछे लिया जाता है कि अभी हम कहां से जा रहे हैं। हाँ, तो हम थोड़ा सा पीछे मुड़ेंगे भगवत गीता के 3रे अध्याय के अंत में भगवान क्या कह रहे हैं और क्यों 4वें अध्याय की भगवान शुरुआत कर रहे हैं। तो भगवत गीता ऐसे नहीं शुरू हुआ। मैं पिछली बार आया था लेक्चर देने, तब मैंने कहा था शायद कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं ये कहा कि अरे अर्जुन चलो अभी मैं आपका ना सेमिनार लेता हूं भगवत गीता के ऊपर, हाँ बैठ जाओ पांडवों के साथ, अपने द्रौपदी को भी बिठाओ। हाँ, ऐसे नहीं कि अभी अर्जुन 1ला अध्याय खत्म हुआ अभी 2रा अध्याय शुरू कर रहा हो, ऐसे हुआ क्या? नहीं, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपरली जो सिक्वेंस है भगवान के इस नॉलेज का, वो व्यास देव ने प्रेजेंट किया। महाभारत, भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत का, भीष्म पर्व में ये ग्रंथ आता है। तो महाभारत को पढ़ना मीन्स भगवत गीता को समझना। जिस व्यक्ति ने महाभारत पढ़ी या महाभारत देखी लेकिन भगवत गीता रूपी जो ज्वेल है, रत्न है, जिसके हाथ में नहीं आया, जिसने नहीं पकड़ा, तो उसका जीवन महाभारत पढ़ने का या देखने का क्या है? निष्फल है। तो महाभारत में क्यों प्रेजेंट किया भगवत गीता को? क्योंकि हम लोग सोशल प्राणी हैं, हमें नाते संबंध रिलेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। महाभारत में यही तो है, 5 पांडव हैं, फिर दुर्योधन आदि हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कई सारी चीजें हैं। हाँ, तो फिर उसमें भगवान भगवत गीता देते हैं, क्योंकि कलियुगा में भगवत उच्च ज्ञान को समझने के लिए लोगों के पास उतना बुद्धि नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए कलियुगा में बार बार बोला जाता है, एक ही चीज को जब रिपीट करोगे तब लोगों के दिमाग में घुसता है, फिर भी नहीं घुसता। घर में ऐसे होता है ना, ऑफिस से जब पति आता है, पत्नी को कहता है कि जरा पानी लेके आओ, एक बार पत्नी को सुनाई नहीं देता, कितनी बार चिल्लाना पड़ता है? 3-4 बार। तो क्यों? कलियुगा में कहा गया है जब तक 3 बार आप नहीं कोई चीज उनको रिपीट करोगे तब तक किसी के दिमाग में नहीं घुसेगी। इसलिए भगवान ने भी कहा हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, तो बारंबार। तो इसलिए भगवत गीता जो महाभारत का एक अंग है और महाभारत में हमें प्राप्त होता है, क्यों? क्योंकि कलियुगा में शूद्र जो लोग हैं, कलो शूद्र संभवा, उनकी बुद्धि इतनी उन्नत नहीं है। हाँ, तो इसलिए उनको महाभारत के माध्यम से ये भगवत गीता प्रदान की। जैसे बच्चे कुछ खाते नहीं है, मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो माँ उनको क्या करती है? शुगर डाल के या कुछ नो, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है, शुगर कोटेड पिल्स होती हैं, वो खिला दे, तब हमें अच्छा लगता है। तो महाभारत वैसे ही है। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता जो समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता को जैसे जैसे हम समझते हैं वैसे वैसे हमारा जो श्रद्धा है वो भगवान की ओर क्या होता है? दृढ़ हो जाता है। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़, फ्लिकरिंग नहीं, कभी आ गए कभी है ना, कभी बच्चा स्कूल जाता है कभी गायब हो जाता है, नहीं, एक है कुरुनंदन। तो वो चीज कैसे आएगी? जब हम रेगुलरली सुनेंगे और समझेंगे तभी हम अपने भक्तिमय जीवन में स्थिर हो पाएंगे। तो 3रे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन के साथ काफी चर्चाएं की और अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अथ केन प्रयुक्तयम् पापम चरति पुरुषा, कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, आपने उस चीज को सुना होगा पिछले क्लास में, कि क्यों न चाहते हुए भी मैं क्यों पाप कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता हूं, दुष्कर्म में क्यों मेरी मति लगती, मैं जानता हूं यह गलत है, हाँ फिर भी क्यों? तो भगवान कहते हैं, कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा। तो ये जो काम है, जो महापापमान, वो कहते हैं कि पापमय कार्य हमसे करवाता है, और हर एक मनुष्य का ये वैरी है। और ये जो काम है, काम मीन्स, काम के दो अर्थ हैं, एक है काम वासना, दूसरा है भौतिक डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छाएं क्या है? जो भगवान के अलावा जो डिजायर्स हैं वो क्या है? भौतिक इच्छाएं, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्या देही। धनम मीन्स धनम चाहिए, मनी मनी मनी, हाँ, धनम देही, जन्म देही, जन्म मीन्स फॉलोवर्स, है ना, फॉलोवर चाहिए। हर एक को लगता है कि मेरे कुछ फॉलोवर्स होने चाहिए, लोग होने चाहिए, शिष्यगण होने चाहिए, हाँ, मतलब वो मोहल्ले में भी रह रहा है तो उसको लगता है कि मोहल्ले के कुछ लोग अपने होने चाहिए, अनुयायी होने चाहिए, हाँ, फॉलोवर्स। तो धनम देही, जन्म देही, धनम देही, और रूपवती भार्याम देही, रूपवती सुंदरी स्त्री पत्नी चाहिए, या फिर सुंदर पुरुष पति के रूप में चाहिए। तो मतलब भौतिक चीजें, जो भगवान के अलावा जो डिजायर्स हैं वो ये हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये काम है। तो भगवान कहते हैं, ऐसी जो काम है, कामना है, वो क्या करती है? हमारे ज्ञान को ढक देती है। अवृत्तम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिना। भगवान कहते हैं, पिछले आप सुना होगा आपने, कि ये जो काम है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है, और जिसके कारण अर्जुन को भगवान कहते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी जो पाप कर्म है उसमें प्रवृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण से ये जागृत होता है। तो ये जब चीजें बताते बताते भगवान ने उनको कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें ये समझना होगा कि ये जो काम है, हाँ, इससे कैसे नाश कैसे हो सकता है इसका। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तो भगवान ने कई चीजें बताई कि इन कहाँ रहता है ये काम, हमारे शरीर में कहाँ निवास करता है ये काम। फिर भगवान ने कहा कि इंद्रिय यानी परान्याहो, इंद्रियों से हायर क्या है? मन है। मन से उन्नत क्या है? मनस्तस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से परे परतस्तुतः, बुद्धि से ऊपर तुम हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। तो भगवान ने कहा कि आत्मा सर्वोच्च है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो भगवान ने कहा आखिरी श्लोक में, तीसरे अध्याय के, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, कि इस प्रकार की बुद्धि में तुम स्थित होगे, तब ये जो काम रूपी जो शत्रु है, हर एक जीव इस काम रूपी शत्रु से बंधा हुआ है, उसकी श्रृंखला मुक्त हो सकती है। किस स्थिति में वो स्थिर होता है? वो यदि इसमें स्थिर हो जाता है, इस ज्ञान में कि वो कौन है, सोल है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन को भगवान ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और फिर मैंने पहना था ऑलरेडी, एक बार पहना था, ठीक है। तो फिर जब भगवान ने ये चीज को बताया कि हे अर्जुन, हाँ, तुम इस दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाओ, कि तुम दिव्य हो, ट्रांसेंडेंटल तुम्हारा नेचर है, तुम सोल हो, आत्मा हो, इस भौतिक जगत से परे हो, तुम भौतिक पदार्थ नहीं हो, ना इंद्रिया मन बुद्धि इनसे परे तुम आत्मा हो, और जब इस स्थिति में तुम स्थिर होते हो, हाँ, तब फिर तुम दिव्य ज्ञान अर्जन कर सकते हो। तो हमारी दिव्य स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो आत्मा का दिव्य स्थिति क्या है? कि वो ये जाने कि मैं इटरनल सर्वेंट हूं कृष्ण का, शाश्वत सेवक हूं, और ये जो सेवक की भावना है वो हमसे अलग नहीं की जा सकती। सेवा की जो भावना है आत्मा से। तो उसी प्रकार से फिर आगे ये जो चौथे अध्याय की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान इसी चीज को कहते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान क्या है, हाँ, उस दिव्य ज्ञान से तुम इस काम रूपी शत्रु से पूरे रूप से मुक्त हो सकते हो। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है वो बताने के लिए भगवान क्या कर, इस अध्याय की शुरुआत होती है कि वो दिव्य ज्ञान क्या है। तो एक से लेकर जो दस दस श्लोक है उन दस श्लोकों में भगवान ये दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं, भगवत की जो दिव्य ज्ञान है। तो उसके श्लोकों को हम सुनते हैं। तो भगवान इस पहले श्लोक में कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवी। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, किसने कहा, हाँ, तो कृष्ण की दिव्यता को, मीन्स अभी ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे, किसके बारे में दे रहे हैं, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, कि भगवान क्या है, दिव्य है। और दिव्य का मतलब है कि हमारे चिंतन से परे है, अचिंत्य ना, अचिंत्य खलु ए भावा, कि वो चिंतन से परे है और इस भौतिक जगत के नहीं है। दिव्यता का मतलब सरल रूप में ऐसे ही है कि जैसे कमल कीचड़ में है लेकिन उससे अभिन्न है। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो हर समय उस कमलवत है, स्थिर है। तो भगवान कह रहे हैं, इमाम विवस्वते योगम, कि हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है ये मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मैंने कब दिया था, हजारों हजारों साल पहले, हाँ, सूर्य देवता जो विवस्वान है, हाँ, उनको दिया था। और उन्होंने किनको दिया, मनु को यह ज्ञान दिया था। और मनु ने आगे चलकर इक्ष्वाकु जो सूर्य वंश में आते हैं और भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये जो सर्वोच्च सबसे पहले ये जो ज्ञान है वो उनको प्रदान करते हैं, विवस्वान को, जो सूर्य, हाँ, जो सन प्लैनेट है उसके जो देवता है, हेड है, हाँ, तो उनको ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्यों प्रदान करते हैं ये ज्ञान उनको, क्योंकि वो लीडर है, राजा है, हाँ, विवस्वान किंग है। तो जब लीडर का ये ड्यूटी है कि वो ये आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करे और उसके नीचे जो लोग हैं वो जिनका टेक केयर कर रहा है उनको ये ज्ञान वो प्रदान करे, ये उसका कर्तव्य है। इसलिए समाज के जो लीडर है उनके पास ये भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए भागवतम में कहा कि पिता न शश्यात जननी न शश्यात, मतलब माँ भी लीडर है अपने घर में और घर में पिता भी अपने आप में एक लीडर है। तो माता पिता के पास भी ये क्या होना चाहिए, यह आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए जिसके द्वारा वो उनके जो अधीन पाल्य हैं उनको वो ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, ताकि ये जो काम रूपी भव बंधन है जिसकी चर्चा तीसरे अध्याय के अंत में की उससे वो उनको मुक्त कर सकता है। इसलिए इसके तात्पर्य में आप देखेंगे दूसरी तीसरी लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो ये भौतिक जगत में निवास करने का हर एक जीव काम रूपी श्रृंखला से बंधा हुआ है, इन श्रृंखला से। और जो लीडर्स हैं उनका यही कर्तव्य है कि वो इस ज्ञान के द्वारा उनको मुक्त करा सकता है। तो ऐसे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो ये दिव्य ज्ञान है मैं आज ही तुम्हें नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैंने 5000 साल पूर्व, या हजार, 5000 नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले विवस्वान को ये ज्ञान मैंने प्रदान किया था। फिर आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योग नष्ट परंतप। तो क्यों मैं अभी क्यों दे रहा हूं अर्जुन, तो भगवान कहते हैं क्योंकि जब यह ज्ञान मैंने दिया था तो कालांतर में यह नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ था, क्या हो गया था, मिक्स हो गया था, मिलावट हो गई थी इस ज्ञान में, अलग अलग लोगों ने इस भगवान के इस दिव्य ज्ञान को प्रेजेंट किया था अपने अपने मतों के अनुसार। तो ये इसको क्या कहते हैं कि वो परंपरा खंडित हुई, भगवान ने कहा, इसलिए मैंने नए रूप से ये जो परंपरा है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके द्वारा। हे अर्जुन, आपसे मैं ये जो परंपरा है वो शुरू कर रहा हूँ, एक प्रकार से ये ज्ञान तुम्हें मैं फिर से दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो भगवान है, ये जो भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, वो परंपरा के द्वारा हमें स्वीकारने के लिए कहते हैं। क्योंकि भगवद गीता ऐसा विषय नहीं है कि टेलीविजन ऑन करो और वहां हजारों बाबा जी, स्वामी, गुरुज आ रहे हैं, किसी से भी सुनो। सब कुछ एक है। सब कुछ एक है क्या? घर में, किचन में सब कुछ एक होता है क्या? नहीं होता, अलग अलग होता है। ऑफिस में बॉस भी अलग होता है, चौकीदार भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो लेकिन जब भगवत चर्चा आती है तो लोग कहते क्या है, सब कुछ तो एक ही है। हाँ, एक ही ओर तो जाना है सबको। हाँ, क्योंकि वो इजी लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा है उसके द्वारा ही ये ज्ञान स्वीकारना चाहिए, क्योंकि परंपरा में ये ज्ञान शुद्ध रूप में हमें प्राप्त होता है। और जब तक शुद्ध रूप में ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होगी। क्योंकि अल्टीमेट हम चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे मन और हृदय को शुद्ध करना। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब अर्जुन को विश्वरूप दिखाया तो उस समय उन्होंने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि आप परम पवित्र हो हे कृष्ण। तो भगवान परम पवित्र है तो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनके पास वापस जाना है, तो हमें क्या करना होगा? पवित्र होना होगा। वो एक योग्यता। और वो पवित्र होने की विधि क्या है? कि हम अपने आप को जो परंपरा है उसके द्वारा इस ज्ञान को हम स्वीकार करें, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए भगवान ये परंपरा में जोर देते हैं। जैसे स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होते हैं, और ऑथोराइज स्कूल कॉलेज आदि में हम जाते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, तो वह स्वीकार्य है। अन्यथा वो चीज क्या है? अस्वीकार्य है। कोई है ऐसा है कि अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजता है जो अनऑथोराइज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं? नहीं। हाँ, ऑथोराइज है तो वहीं भेजते हैं। तो वैसे ही स्पिरिचुअल ज्ञान कोई ऐसा विषय नहीं है कि कहां से भी हम ले ले, नहीं, ऑथोराइज। तो भगवान ने क्या किया, जब भगवान ने देखा कि ये सारे जीव इस जगत में एक अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, हम सब लोग किस में पड़े हैं? किस में? अंधे कुएं में। डार्क वेल, जो कैसा अंधा कुआ जो जंगल में होता है और उसमें हरी हरी घास ढकी होती है। कुछ कुछ अंधे कुएं होते हैं जंगल में जहां हरी घास तो ढकी होती है और दिखता नहीं है, अचानक आप गिर जाते हो और गिर के जितना मर्जी चिल्लाओ आपको बचाने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो लेकिन भगवान का स्वभाव है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण कैसे हैं? करुणा के सागर हैं। तो कृष्ण से रहा नहीं जाता। जितने हम जीव कृष्ण की ओर जाने के लिए ईगर नहीं है, उत्साही नहीं है, उससे ज्यादा कृष्ण हमें ले जाने के लिए उत्साहित है। हाँ, कृष्ण सबसे ज्यादा उत्साहित है। इसलिए तो कृष्ण सारी चीजों को अरेंज करते हैं हमें ले जाने के लिए। उनके टेम्पल्स है, उनके डिवोटीज है, उनके बुक्स है, और धाम है, कई सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि जीव को वापस ले जाने के लिए कृष्ण ये सारी चीजें अरेंज करते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं इतना जल्दी क्या है, किसको लगता है कि जाना चाहिए वापस भगवान की ओर? लगता है? मुझे अभी तक नहीं लगता। अभी भी लगता है दिल्ली बेस्ट है। हाँ, मैं अभी अभी आ रहा था तो एक रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था, मतलब अभी भी हमें इतना अच्छा लगता है कि हम यहां के जो सिटीज हैं, देश आदि है, उनको हम देखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, इतनी जल्दी नहीं है। जैसे वो स्टोरी आपने सुना होगा, वो कैलाश का, नारद जब आए थे, चलो चलो भगवान ले जाना चाहते, वो कहते नहीं अभी तो ये करना है, वो करना है, आता ही नहीं। तो क्योंकि हम इस जगत में ही रहना चाहते हैं, हमें डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा होती तो भक्ति में वो तीव्रता होती, सुनने में वो ईगरनेस होती, भगवत गीता को समझने के लिए लालसा होती, सेवा करने के लिए उत्साह होता। हाँ, क्योंकि वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें जाने की इच्छा ही नहीं है। किसी चीज के लिए हमारी स्ट्रांग डिजायर होती है तो उसके लिए हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, होते कि नहीं? जैसे किसी को लगता है कि जो दिल्ली फोर्ट क्या कहते हैं, लाल किला ना, पुरानी दिल्ली में क्या है, हाँ जो भी फोर्ट है, तो वहां यदि कोई विशेष पानीपुरी मिल रही है या कोई चीज होगी वहां की फेमस, हाँ यदि हम यहां बैठ के डिजायर हो जाता है स्ट्रांग, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, चाहे किसी का गाड़ी मिले नहीं मिले, ऑटो पकड़ेंगे मेट्रो पकड़ेंगे वहां जाएंगे, क्यों, वो चाहते हैं हम, स्ट्रांग डिजायर है उसको चखने की। तो वैसे ही भगवान की ओर जाने की कोई ऐसी स्ट्रांग डिजायर नहीं है। तो वो रिक्शा के पीछे लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक पोयम फॉर्म में था, तो उसने लिखा था कि मैं मुंबई देखना चाहता हूं लेकिन दिल्ली शहर में रहता हूं, और फिर ये था कि लेकिन मेरा जो जीवन है वो रास्ते में गुजरता है। मतलब एक प्रकार से व्यक्ति की आशा है, अभी दिल्ली से मैं संतुष्ट नहीं हूं, अभी मैं क्या चाहता हूं, मुंबई चाहता हूं, मुंबई से संतुष्ट नहीं हूं। हाँ जैसे गांव के लोग शहर आना चाहते, टाउन में आना चाहते, टाउन के लोग शहर में आना चाहते, शहर के लोग दुबई जाना चाहते हैं, दुबई के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और अमेरिका के लोग नहीं मून में जाना चाहते हैं, और मून में जाने वाले लोग फार्म हाउस में आना चाहते हैं। मतलब पूना विलेज, अभी आप ये कल्चर जो फार्म हाउस का कल्चर है वो क्या है, पूना विलेज में चले जाओ, पहले विलेज छोड़ दिया, फार्म छोड़ दिए, और फिर वापस आ रहे हैं फार्म हाउस, हाँ बनाते बड़े बड़े फार्म हाउस, क्यों, क्योंकि वो रियल लाइफ है, आनंद नहीं है। तो इस प्रकार से जो भगवान इस कुएं में हम फंसे हैं, तो भगवान ने चार रस्सियां डाली, हाँ चार रस्सी, और वो रस्सी क्या है, परंपराज, हाँ संप्रदाय, चार संप्रदाय वो रस्सियां हैं जिनको हम पकड़े तो नेचुरली ये जो भौतिक सागर है, भौतिक कुआं है, उससे हम तुरंत निकल सकते हैं। तो पद्म पुराण में उसी का ही वर्णन आया है, संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला मता। इन चार अथोराइज संप्रदाय के अलावा कोई व्यक्ति टीचिंग किसी और से ग्रहण करता है या फिर मंत्र ग्रहण करता है तो वो निष्फल है। क्या है, निष्फल। श्रम एव ही केवलम, और उसका कार्य करना वो केवल श्रमहीन है। तो इसलिए उस पद्म पुराण में कहा है कि अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिन, अतः चार चार संप्रदाय होंगे, कृष्ण कहते हैं पद्म पुराण में मेरे चार, इन चार परंपराज होगी जिनको अथोराइज किया है, ये चार रस्सियां हैं जिनको कोई जीव पकड़ता है तो भगवान की ओर जा सकता है। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावक, तो कौन कौन से हैं वो, श्री संप्रदाय, हाँ रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो भगवान ने ये परंपराएं दी हैं कि जिसके द्वारा हम जो प्योर नॉलेज है वो ग्रहण कर सकते हैं, और इस परंपरा के अलावा यदि ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हम मतलब एक प्रकार से विष का पान कर रहे हैं, मतलब लगेगा कि बहुत प्योर है, और ऐसे भी लगेगा कि अरे ये तो शुद्ध है, ये तो वही भगवद गीता के श्लोक है, हाँ ये उसी प्रकार से कथा है, सब चीजें वैसी लगेगी, हरे कृष्णा मंत्र भी छांट करेंगे गाएंगे, हाँ लेकिन वो क्या पी रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने कहा कि सर्पोचिष्ट यथा पयम, ये चीज वैसी ही है कि जैसे एक सांप है वो दूध को पी के चला जाता है, तो दूध का कलर बदलता है उससे, नहीं बदलता, लेकिन कोई व्यक्ति जाकर उस दूध को फिर से पीता है तो निश्चित रूप से उसका क्या होगा, मृत्यु है, उसका हनन होगा। हाँ तो हमारी स्थिति वैसे ही है, यदि चार संप्रदायों के अलावा हम कहा भी सुनते हैं कुछ भी पढ़ते हैं तो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करेंगे, हाँ अपने आप को धोखा देंगे या अपना स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन होगा, नीचे हम चले जाएंगे। तो इसलिए टेलीविजन तो ऐसे ही है, हाँ सारे अप संप्रदाय भरे पड़े हैं, हाँ वो तो बिजनेस हो गया, चैनल अपना अपना, हाँ कोई भी आता है, तो वो सब चीजें नहीं। हाँ इसलिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध होने के लिए क्या, शुद्ध ज्ञान। तो जो इस्कॉन है वो ये ब्रह्म संप्रदाय में है। ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू हुई, ब्रह्मा नारदा व्यासा मध्वाचार्य और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी आदि और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये परंपरा भगवान स्थापित करते हैं, क्योंकि क्यों सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन ये योग, और योग क्या है, इन सारे श्लोकों में योग शब्द बहुत बार आया है। भगवान ने पहले श्लोक में कहा इमं विवस्वते योगम, योगम का मतलब है संबंध, योग का मतलब है जोड़ना। तो ये जोड़ने वाला जो ज्ञान है, किसके साथ जोड़ने का ज्ञान, मेरे साथ, भगवान कहते हैं। ये जोड़ने का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था और कालांतर से नष्ट हो रहा था, फिर मैं ये नॉलेज अभी हे अर्जुन तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। क्यों प्रदान कर रहा हूं, तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं सयेवायम मया त्यध्य योग प्रोक्त पुरातन। बार बार योग शब्द को भगवान बोल रहे हैं। तो योग का मतलब क्या है कि शारीरिक कसरत करना योग नहीं है। लोगों को लगता है कि योग का उद्देश्य कोई शरीर को ठीक करने के लिए नहीं है, प्राणायाम आदि करते हैं लोग, इसको नोज क्या कहते प्रेसिंग, नोज प्रेसिंग एक्सरसाइज प्रभुपाद कहा करते थे, ये क्या इससे क्या होगा। हाँ, तो योग का उद्देश्य शरीर को ठीक करना नहीं है, योग का मतलब है भगवान के साथ जो हमारा संबंध हम भूल गए हैं उसको स्थापित करना, वो योग है। और वो योग कैसे करेंगे, तो वो ये दिव्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं। और जब तक ये ज्ञान हम नहीं अनुभव करेंगे तो नेचुरली हम जो भगवत संबंध है वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम कौन हो, भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम हे तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्ति नहीं मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ये जो भगवद गीता का रहस्य है उसके लिए भक्त होना होगा, समझने के लिए भगवत ज्ञान, भगवान को जानने के लिए केवल भक्त बनने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा भक्तों से मैं सखा चेती या भक्त्या माम अभी जानाती, भक्ति मुझे जान सकता है। और अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले ही श्लोकों में पूछा तो भगवान कहते नहीं नहीं मेरे डिवोटीज ही मुझे जान सकते हैं। तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारे पास से भगवान बहुत दूर है। तो भक्त कैसे बनता है व्यक्ति, जब भक्तों के संग में आता है। हाँ, भक्ति जन्म मूल है साधु संग, बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज द बर्थ प्लेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जो भक्ति है उसका जन्म भक्तों के संग में होता है। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैंने इस्कॉन बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, संघ समाज सोसाइटी। हाँ, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो नेचुरली जो भगवान है उनके प्रति जो भक्ति है वो हृदय में विकसित होगी। और यदि भगवान के प्रति यदि हृदय में भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन पशुवत है। कैसे है, पशुवत है। तो इसलिए जो भगवद गीता है उसको समझने के लिए व्यक्ति को भक्त होना होगा। और इसी कारण से भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को इसी चीज पर जोर देते हैं कि हे अर्जुन ये पुरातन विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और आगे के श्लोक में भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है अपने दिव्यता के बारे में, तो अर्जुन को डाउट हो गया, संशय, कहते आप तो मेरे मित्र हो और अभी आप कहते कि मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, तो वो कहते कि कुछ तो ये है ठीक नहीं लग रहा है, आपका वक्तव्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानीयम तमादो प्रोक्तवानिति, आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपका जन्म तो विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ है, आपसे श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है, अब मैं कैसे समझू ये चीज को। तो कोई कहेगा कि अरे इतना बड़ा भक्त है अर्जुन, वो कैसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, उनको क्या कृष्ण के वचनों में विश्वास नहीं है, हाँ लेकिन नहीं, हाँ अर्जुन तो भगवान के 100% शरणागत भक्त हैं, लेकिन भक्त क्या करते हैं, उनको वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो दूसरों का मंगल हो, कैसे, दूसरों के हित के लिए, खुद के लिए नहीं। तो अर्जुन के लिए तो आवश्यकता नहीं ऐसे प्रश्नों की, लेकिन उन्होंने सोचा कि कई लोग ऐसे सोच सकते हैं, तो इसलिए दूसरों के लिए अर्जुन ने ये इस प्रकार का जो प्रश्न है उनको पूछा, और इस विद्या का ज्ञान देने के लिए भगवान फिर अगले श्लोकों का वर्णन करते हैं। बहुनी मे व्यतितानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहम वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परंतप। तो भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम सबसे पहले तो ये जानो कि आपका जो जन्म है, हाँ, या मेरा जो जन्म है आपका, और हमने कई जन्म बिताए हैं, बहुनी मे व्यतितानि, बहुत जन्म हमने बिताए हैं, लेकिन तान्यहम वेद सर्वानि, उनको मैं जानता हूं, उनको तुम नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान की ये दिव्यता है कि भगवान का जो शरीर है वो परिवर्तन रहित है, और हमारा क्या है, हर मृत्यु के बाद हम नया शरीर धारण करते हैं, और इसी कारण से हम भूल जाते हैं, और नॉर्मल जीवन में भी हम देखते हैं कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। बचपन का जो शरीर है तो बचपन की चीजें हमें याद नहीं है, क्योंकि अभी टोटली शरीर परिवर्तित हो गया है। तो वैसे ही भगवान ने कहा, क्योंकि तुम्हारा शरीर परिवर्तन होता है मृत्यु के बाद, इसी कारण से तुम्हें वो चीजें याद नहीं है, लेकिन भगवान को वो चीजें, भगवान कहते हैं उन सबको मैं जानता हूं, तान्यहम वेद सर्वानी, उन सब चीजों को मैं जानता हूं। तो भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार करोत भुवनेषु, किंतु नाना अवतार, असंख्य अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सब चीजों के स्मरण है लेकिन तुम इसको जानते नहीं हो। हाँ, तो भगवान का शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है, भगवान का शरीर कैसे है, दिव्य है, सच्चिद आनंद, हाँ आनंद घन जिनको कहा गया है। तो फिर भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं कि अजोपि सन्नाव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अज अपि, हाँ जन्म नहीं लेता हूं मैं, हाँ, और अपने जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसके आश्रय से इस जगत में मैं प्रकट होता हूं। हाँ, तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, भगवान कैसे हैं, एक सूरज की तरह है, सूर्य के समान है। ऐसे होता है कि आज सूर्य ने जन्म लिया और फिर शाम को मर गया, हम कहते हैं ऐसे नहीं। तो भगवान सूर्य के समान है, सूर्य उदित होता है और सूर्य का अस्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान है वो इस जगत में प्रकट होते हैं और इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो वो जन्म नहीं ग्रहण करते। हाँ, तो ऐसे जो भगवान है अपनी आत्म माया के द्वारा इस जगत में प्रकट होते हैं, और कब प्रकट होते हैं, तो भगवान आगे दो श्लोकों में कहते हैं, यदा यदा ये धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, हाँ अभ्युत्थानम अधर्मश तदात्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म का पतन होता है, तो धर्म का पतन क्या है कि जब व्यक्ति अपने धर्म का पतन यही है कि जीव अपने स्वभाव को भूलता है, क्योंकि धर्म क्या है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी वो धर्म है, जो भी भगवान बोले वो क्या है, धर्म है भगवान की वाणी, और भगवान के वाणी के अलावा जो भी चीजें हैं वो क्या है, अधर्म, उसका हम पालन करते तो हम अधर्म का पालन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो धर्म है, और परम धर्म क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान कहते हैं कि जीव का धर्म है मेरी सेवा करना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर दास और किसी का दास नहीं। हम ऑलरेडी जीवन में कई चीजों के दास है, हुए हैं या हो रहे हैं, हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं ये जीव तो मेरी सेवा के लिए है और मेरी सेवा के द्वारा ही वो आनंद अनुभव कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज, नाना प्रकार के धर्म है, शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, हाँ, समाज का धर्म है, कई सारे जो धर्म है, तो लेकिन जो जीव का धर्म है जिसको जैव धर्म कहा गया है या आत्मा धर्म कहा गया है वो एक ही है। हाँ, सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे, कि परम धर्म यही है कि जीव ने हर एक जीव को कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करें, ये उसका परम धर्म है। हाँ, तो वो भक्ति हमारे हृदय में विकसित करना ही हमारा वास्तव में धर्म है। और इस धर्म की जब ग्लानी होती है, हानि होती है, तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूं, यदा यदा ही धर्मश, मैं आता हूं और इस जो धर्म है उसकी स्थापना करता हूं, तब मैं अवतार लेता हूं। और एक कारण बताते हैं, क्या करता हूं मैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो ये जो श्लोक, हम एक बार यूपी के किसी टाउन्स में जा रहे थे, तो एक टाउन में पहुंचे तो वहां पुलिस स्टेशन के बाहर ये श्लोक लिखा हुआ था। हाँ, पुलिस स्टेशन होता है बड़ा सा, तो उसमें लिखा था यदा यदा ये धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मश, तो उसको यूज कर रहे हैं भगवान के चीज को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पुलिस जो है वो सोच रहे हैं कि हम भगवान के इस कार्य में हम सहायता कर रहे हैं। क्या सहायता कर रहे हैं? वो तो धर्म, जो अधर्मी लोग हैं उनको तो वैसे ही रखते हैं, साधुओं को क्या करते हैं, तंग करते हैं। हाँ, तो लेकिन बड़े गर्व से उन्होंने उस श्लोक वहां लिखा था। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए परित्राणाय साधुना, भगवान आसुरों को मारने के लिए नहीं आते, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं, वो तो प्रह्लाद के लिए प्रकट हुए थे और देवकी के लिए प्रकट हुए थे। तो भगवान इस प्रकार से जो कृष्ण है वो एक ही चीज के लिए आते हैं, अपने जो भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, क्योंकि दुष्टों का विनाश करने के लिए उनको स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी मच्छर को भी भेज दे तो मच्छर हजारों हजारों आसुरों का विनाश कर सकता है। तो भगवान केवल आनंद लीला अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस जगत में प्रकट होते हैं। और कब कब? संभवामी युगे युगे। तो भगवान कहे कि अभी मैं आया हूं, ये कब बोला था भगवान ने? द्वापर के अंत में। और तो कहते तुरंत आऊंगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा वो दो युगे युगे वहां यूज किया है शब्द भगवान ने। क्यों? क्योंकि द्वापर के एंड में मैं आया था और कली के शुरुआत में मैं आने वाला हूं। किस रूप में? से चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और क्या करूंगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मैं अवतरित होता हूं या प्रकट होता हूं, और इस मेरे दिव्यता को कोई व्यक्ति जानता है। कौन सी दिव्यता? कि मैं इस मेरा जो शरीर है वो भौतिक नहीं है। हाँ, मैं भूत भविष्य और सब चीजों का ज्ञाता हूं, और मैं जन्म आदि इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं हूं। इन सब चीजों को जो व्यक्ति जानता है तो वो व्यक्ति भगवान कहते अगले आखिरी इन दो श्लोकों में कि क्या होगा, भगवान की इस दिव्यता को जानने से क्या लाभ होगा, क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका इफेक्ट है। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, कोई व्यक्ति इस दिव्यता को जानता है। कौन सी दिव्यता? मेरे जन्म और मेरे कर्म। तो हमारा जन्म और भगवान का जन्म अलग है। हम जन्म लेते हैं, हाँ, माँ के गर्भ में वैसे ही रोते रहते हैं, बाहर निकलते हैं एक सेकंड नहीं होता तो भी रोते रहते हैं, और जीवन भर रोते रहते हैं, मृत्यु के समय भी रोते रहते। तो ये हमारा लीला है। एक व्यक्ति कहता है कृष्ण करे तो लीला। तो इस प्रकार से ये हमारी भौतिक जीवन है कि हम जन्म लेते हैं बाध्य होकर अपने कर्मों का फल को भोगने के लिए। हमें फोर्सफुली किसी मां के गर्भ में डाला जाता है। प्रविष्ट पुंसा रेत कनाश्रया, पुरुष के वीर्य के द्वारा उस जीव को स्थापित किया जाता है फोर्सफुली। वो नहीं चाहता, कौन चाहेगा छोटे से रूम में बंद होना। आपको किसी को बाथरूम में बंद किया जाए एक हफ्ते के लिए, चाहेगा कोई आनंद से? नहीं। हर कोई निकलना चाहता है, फास्ट निकलो बाहर निकलो, लेकिन वह फोर्सफुली हमें शरीरों में जाना होता है। हाँ, क्योंकि हम बाध्य हैं। तो भगवान जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, और वो जन्म लेते तो ऐसे नहीं कि वो गर्भ में बैठे रहते हैं, नहीं, वो प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव के सामने क्या हुए? वो प्रकट हुए। हम जन्म लेते तो कोई कपड़े नहीं होते शरीर में, क्या ऐसे हुआ? गिनीज बुक में लिखा है कि कोई एक बच्चा जन्म ले लिया पूरे मुकुट और उस मोबाइल हाथ में लेकर आया बाहर, ऐसे कुछ आया, कुछ न्यूज नहीं आज तक है हिस्ट्री में कोई ऐसा उदाहरण कि कोई वो बरमुडा पहन के कोई बच्चा जन्म ले लिया, ऐसे है कोई? नहीं है। या धोती पहन के आ गया? नहीं। लेकिन कृष्ण है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो इस भौतिक नियमों से परे हैं। लेकिन ऐसे कृष्ण जब इस जगत में जन्म लेते तो हम उनको क्या सोचते कि हमारे जैसे ही हैं। मानुषम देहम आश्रितः, हम भगवान कहते जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे सोचते कि मनुष्य के देह में मैं आश्रित हूं। भगवान कहते नहीं, हाँ मैं इस भौतिक देह से परे हूं। तो भगवान का आना वैसे ही है जैसे कभी जेल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। हाँ, लेकिन कैदी उनको क्या सोचते हैं? ये भी तो यही है, क्या कहते हैं, कैदी है। तो हमारी बिल्कुल वैसे ही धारणा है, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो उसी प्रकार से भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है हमारे जैसे नहीं, और उनके कर्म भी। हाँ, भगवान के कार्यकलाप तो हमेशा दिव्य है। कितने दिव्य, भगवान जो भी करे वो आनंद देने वाली है चीजें। भगवान चाहे वो माखन चुराते हैं तो भी व्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबा देते हैं, और वो कोई भी कार्य करते हैं, जैसे उन्होंने माखन क्या चुराया तो आज तक कई सारे जो सिंगर्स है वो गाते रहते हैं। हाँ, और पैसा कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई हुआ किसी ने चोरी कर दिया और भौतिक किसी व्यक्ति ने, और हम वो चीज को गान कीर्तन कर रहे हैं या फिर गीत गा रहे हैं, ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्य वो हर समय इन तीनों गुणों से परे है। नमे कर्म फले स्पृहा, भगवान कहते मुझे इस जगत में कोई इच्छा नहीं है कर्म करने की, ना मैं इस चीज से बंधता हूं। हम बन जाते हैं कर्म और उनके फलों के द्वारा। कोई व्यक्ति इस प्रकार से जानता है तत्व से, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञान है वो भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार के भगवान की दिव्यता को जानना है तो क्या करना चाहिए? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, भक्त का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? प्रणिपाते न, प्रणाम आदि के द्वारा, सेवा के द्वारा, और परिप्रश्न सेवया। हाँ, तब जिज्ञासा करके हम उनके हृदय से उस दिव्य जो नॉलेज है उसको अर्जन कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान के इस दिव्य ज्ञान को कोई प्राप्त करता है तो भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन की, हे अर्जुन ऐसा व्यक्ति इस देह को त्याग के पुनः इस जगत में नहीं वापस आता। तो भगवान कहते कि ऐसे नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, नहीं नहीं, भगवान फिर आखिरी श्लोक में कहते हैं, दसवें श्लोक में, कि बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगता, बहुत लोग इस ज्ञान को अर्जन करके पवित्र हो गए हैं। आखिरी दसवें श्लोक में कहते हैं वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, जो मुझमें पूर्णतया स्थित है वो व्यक्ति आसक्ति भय और क्रोध से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान से पवित्र हो जाता है, और ऐसे पवित्रता के कारण वो मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है, और ऐसे दिव्य प्रेम के कारण इस जगत में वो आ नहीं सकता। तो इस प्रकार से इन श्लोकों के द्वारा हम यही सीखते हैं कि भगवान इस पर जोर देते हैं कि जो दिव्य ज्ञान है वो हमें परंपरा के द्वारा, ऑथोराइज सोर्स के द्वारा सुनना चाहिए, ऑथोराइज ग्रंथ को ही पढ़ना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि प्रभुपाद ने भगवत गीता दिया है, भगवत गीता यथारूप एज इट इज। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या है कि चाहे कोई कौन से ही शरीर का हो, रंग का हो, जाति का हो, हर कोई इस आत्मज्ञान को समझ रहा है और उसके अनुसार कार्य कर रहा है। शास्त्र कहते फले न परिचयते, कि कौन सा इफेक्ट क्या है, शुद्ध ज्ञान का इफेक्ट क्या है कि पवित्रता आ जाती है तुरंत ही। हाँ, जैसे कौन सा आम का पेड़ अच्छा है तो उसके फल खाएंगे तो पता चलेगा। तो वैसे ही प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, और क्योंकि परंपरा के द्वारा प्रभुपाद ने यह ज्ञान स्वीकारा था, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कौन से संप्रदाय में इसकोन? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो चार संप्रदायों में यह संप्रदाय है, ब्रह्मा से यह शुरू हुआ था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, भगवान ने उनको उनके हृदय में यह ज्ञान प्रकट किया था, दिया था ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने क्या किया फिर? नारद उनके जो पुत्र हैं, नारद ने व्यास देव को, व्यास देव के बाद आगे चल के मध्वाचार्य को यह ज्ञान उन्होंने दिया, और मध्वाचार्य के बाद माधवेंद्रपुरी आए। तो इसलिए इस संप्रदाय को, माधवेंद्रपुरी बंगाल से थे, बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है, तो इसलिए इसको नाम पड़ा ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब ही है सम्यक रूप से प्रदान करना, कृष्ण को पूरी तरह से दे देते हैं ये जो आचार्य गण है, क्योंकि उस ज्ञान को वो शुद्ध रूप से लाते हैं और उसी चीज को आगे प्रवाहित करते हैं। तो भगवान इन श्लोकों में इसी का जोर देते हैं कि हमें जो ये ज्ञान है परंपरा के द्वारा स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए, और भगवत गीता या इस रहस्य को समझना है तो हमें भक्त का आश्रय लेना चाहिए या स्वयं भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब भगवान की दिव्यता को समझ पाएंगे। भक्तों के आज्ञा के अनुसार हम यदि भक्तिमय कार्यों को करते हैं तो भगवान के दिव्य ज्ञान को हम सरलता से समझ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक छोटा सा लीला आता है चैतन्य महाप्रभु का। समय तो हो गया है, मैं जस्ट 5 मिनट के लिए उस ब्राह्मण का जो पास टाइम है वो सुनाता हूँ, कि किस प्रकार से यदि व्यक्ति सिंसियरली गुरु और भक्तों के आदेशों का पालन करता है तो नेचुरली वो भगवान की दिव्यता को समझ जाता है। हाँ, स्वाभाविक रूप से। हाँ, केवल वो आज्ञा का पालन करने के लिए हमें फिक्स होना चाहिए। ये वैसे ही है, डॉक्टर जैसे हमें रूल्स नियम आदि देता है तो उसको हम ठीक से पालन करते हैं तो हमारी सारी बीमारियां जल्दी दूर हो जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो यात्रा करते करते वो तिरछी के पास पहुंचते हैं, श्रीरंगम नामक जो स्थान है, और वहां वो एक वेंकट भट्ट के घर में निवास करते हैं। और एक बार चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर में जाते हैं तो वहां का वर्णन आता है, तो मैं उन श्लोकों को पढ़ के सुनाता हूं आपको। सेई क्षत्रिय रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता अवर्तन। तो कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा था वो ब्राह्मण? भगवत गीता। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा कि भगवत गीता का अध्ययन कितना महत्वपूर्ण है, तो सेई क्षत्रिय रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, तो श्री रंगम नामक का जो स्थान है जहाँ रंगनाथ निवास करते हैं, रंगनाथ देव जो डेटीज जिनकी पूजा स्वयं भगवान राम करते थे, तो उस स्थान में एक ब्राह्मण थे और मंदिर के अंदर जाकर वो भगवत गीता को पढ़ते थे, डेली चांट करते थे। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। तो ये ब्राह्मण क्योंकि उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन करना है मुझे, चाहे समझ में आए या नहीं आए, क्योंकि सिंसियर डिजायर, जैसे मैंने कहा कि हम जाना ही नहीं चाहते भगवान के पास, तो बहुत डिफिकल्ट है, कृष्ण ज्यादा इगर है हमें वापस ले जाने के लिए। तो ऐसे जो ब्राह्मण है वो 18 अध्यायों को पढ़ते थे, और भौतिक रूप से उतने वो शिक्षित नहीं थे और वो अशुद्ध रूप से पढ़ते थे, तो कई सारे लोग ब्राह्मण आदि दूसरे उनका उपहास करते थे, निंदा करते थे, देखो देखो ये तो पढ़ना ही नहीं आता और वैसे ही पढ़ रहा है। केह हासे केह निंदे तहा नाही माने, आविष्ट हैया गीता पढ़े आनंदित मने। तो कुछ लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कोई निंदा करते थे, तो लेकिन ये किसी चीज को देखते नहीं थे, और ये सबके साथ होता है। जब आप इस्कॉन में नए नए आते हैं, कभी आपने माला हाथ में ले लिया तो कहेंगे ये क्या आपने लिया है, हाँ ये क्या है। एक बार हम जा रहे थे तो किसी एक जगह, तो कहते आपके हाथ में क्या बैंडेज लगाया, क्या कुछ टूट गया है क्या हो गया है या फिर आप कुछ तिलक लगाना शुरू कर दे, हाँ वो पड़ोसी आसपास के मित्रगण कहते इसमें क्या हो गया, हाँ बहुत अच्छा था पहले तो बहुत अच्छा था, अभी इसमें कुछ पागलपन आ गया है। तो लेकिन ये दोनों चीजें हैं, भक्त कर्मी लोगों को सोचता है वो लोग पागल हैं, और वो लोग हमें क्या सोचते हैं, ये लोग पागल है, नाचते रहते गाते रहते पता नहीं क्या करते हैं दिन भर, हाँ। तो लेकिन एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन एग्जैक्टली पागल है कह हंसे। तो लेकिन ये इतने फिक्स थे ब्राह्मण, तो कोई हंस उनका निंदा कर रहा है कुछ भी, लेकिन एक फिक्स नहीं, हाँ मुझे मंडे प्रोग्राम में जाना ही है, भगवत गीता मंदिर में जाके पढ़ना ही है, क्योंकि मंदिर में ही भगवत गीता पढ़ रहे थे। तो अविष्ट हया गीता पढ़े आनंदित मने, तो लेकिन वो बहुत आनंद के साथ भगवत गीता को स्टडी कर रहे थे। पुलकाश्रु कंप स्वेद जावत पठान, देखी आनंदित हैल महाप्रभु रमान। तो महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे ये व्यक्ति सिंसियर है, ये भगवत गीता पढ़ रहा है, इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हाँ भगवत गीता को पढ़ने मात्र से कंपित हो रहा है, हाँ महाप्रभु को आनंद, क्योंकि कृष्ण आनंदित हो जाते हैं, किसी जीव भगवत गीता का स्पर्श करता है तो कृष्ण की कृपा वो प्राप्त करता है, फिर जो खोलेगा पढ़ेगा हाँ उसका भगवान बहुत अधिक उससे प्रेम करने लगते हैं, हाँ भगवान चाहते हैं उस जीव को। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक आनंदित हुए कि ये ब्राह्मण पढ़ना भी नहीं जानता लेकिन पढ़ रहा है, हाँ। महाप्रभु पूछी लतारे सुन महाशय, कोना अर्थ जानी तो मार एत सुख है। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, ओ ब्राह्मण हाँ बहुत आप तो भगवत गीता काफी देर से पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ आप रो भी रहे हो, बताओ बताओ क्या अर्थ क्या आपको समझ में आ रहा है भगवत गीता में, और इतना आनंदित आनंद अनुभव आप कर रहे हो क्यों। विप्र कहे मूर्खा में शब्दार्थ ना जानी, शुद्धा शुद्धा गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो कहते मैं तो मूर्ख हूं, मैं क्या हूं, ये योग्यता है भगवत गीता को समझने के लिए। जब तक हम अपने आप को मूर्ख नहीं समझेंगे और अप्रोच नहीं करेंगे वैष्णवों को, तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। मेरे गुरु ने कहा तुम तो मूर्ख हो, वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, बस ये हरे कृष्ण मंत्र जप करो। तो मैंने उस आज्ञा का पालन किया। वो कहते मैं तो जानता नहीं हूं, पढ़ना आदि नहीं जानता, लेकिन एक चीज है, हाँ मेरे गुरु ने कहा है, भक्तों ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए, उसका मैं पालन करने का प्रयास करता हूं। अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रजुधर, बसिया छे हाते तोत्र श्यामल सुंदर। तो कहते एक चीज मुझे बस पता है, और वो चीज क्या है, अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रजुधर। मैं जब भगवत गीता के इस कवर को देखता हूं, हाँ जिसमें क्या है कि जो कृष्ण है श्यामल सुंदर, उन्होंने क्या किया है, अर्जुन के सारथी बन के क्या पकड़ा है, रज्जू, जो रस्सिया पकड़ी है, लगाम को पकड़ा है। अर्जुन रथे कृष्ण हय रज्जुधर, बसी अच्छे हाते तोत्र श्यामल सुंदर। और वो कैसे है, श्यामल है, श्यामम त्रिभंग ललितम, वो बहुत सुंदर ऐसे कृष्ण है। अर्जुने रे कहिते छेन हित उपदेश, तारे देखी हय मोर आनंद आवेश। तो कहते हैं कि मुझे, मैंने ये देख, जब मैं देखता हूं कि ऐसे कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनके लिए सर्व कर रहे हैं, इसलिए मैं आनंद से पागल हो जाता हूं इस चीज को सोचने मात्र से। तो ये वास्तव में भगवत गीता का सार है। तो जैसे उन्होंने ये कहा, यावत यावत पढ़ो तावत पाया तार दर्शन, यही लागे गीता पाठ ना छाड़े मोर मन। और जैसे जैसे मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, वैसे वैसे मुझे जो भगवत गीता के ब्यूटीफुल फीचर्स हैं वो प्रकट होने लगते हैं, और भगवान की सुंदरता और अधिक महसूस होती है। तो भगवान क्या है, नव यवनम च, हमेशा वो सुंदर, सुंदरता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये भगवान का दिव्यता है। तो मुझे जब मैं देखता हूं, तब मुझे ये महसूस होता है कि वही कृष्ण जो सारे जगत के स्वामी हैं, वो अर्जुन के सारथी बने हैं और रज्जू पकड़ी है उन्होंने। और इसी चीज को देखने मात्र से मैं आनंद अनुभव करता हूं। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारे अधिकार, तुम्हें से जान ये गीता अर्थ सार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में गीता का पाठ करने के लिए, गीता को पढ़ने के तुम अधिकारी हो, और जिसके कारण तुम ये गीता के सार को समझ पा रहे हो। गीता का सार क्या है ये जाने कि भगवान कितने ये है अपने भक्त के लिए समर्पित है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है भक्त भक्त भगवान। क्या नाम है, भक्त भक्त भगवान। भक्त के भी भक्त बन जाते हैं कृष्ण, हाँ, जब कोई व्यक्ति उनका भक्त बन जाता है, उनकी सेवा में लगता है। तो ऐसे जो वो ब्राह्मण है भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनको देख के आनंद अनुभव करते हैं। एत बोले से विप्रे कैल अलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे नरोदन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस गीता स्टडी करने वाले ब्राह्मण का क्या किया, आलिंगन किया, और उस आलिंगन के द्वारा वो जो ब्राह्मण है वो रोने लगता है। कहा कि आपको देखने मात्र से मैं बहुत अधिक आनंद अनुभव करता हूं, और मुझे लगता है कि आप ही वो श्याम सुंदर कृष्ण है, उनकी दिव्यता को रिवील करते कृष्ण। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस लीला से सिखाते हैं कि भगवत गीता कैसे हमें गंभीरता से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी लगता है अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो ना, रख देते भगवत गीता। वो मंडे क्लास में जाएंगे तभी खोलेंगे उसको। नहीं, डेली जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, वैसे भगवान फिर बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं जानने के लिए उस व्यक्ति को बुद्धि देता हूं जो मुझे जानना चाहता है। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता के इन श्लोकों की चर्चा थी, जहां कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं, और चैतन्य चरितामृत से हमने उस छोटे से लीला को भी संक्षेप में सुना कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवत गीता को स्टडी करने का प्रयास करता है तो साक्षात कृष्ण उसको गाइड करते हैं और भगवान आनंद अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा।